स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी हैं, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
ये जिंदगी वीरान है यीशु नाम के
वीरान रास्ता है। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और अपने प्रियों के साथ आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से जकरयाह नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के द्वारा हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जकरयाह के द्वारा उन दर्शन की बातों को किस रीति से इसराइलियों तक पहुंचाता है। मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम इस पुस्तक के अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम जकरयाह नबी की पुस्तक से आपके वचन को सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार और विमर्श करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि प्रत्येक श्रोता भाई बहन आपके जीवित वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। पिताजी, आप उनकी सहायता करें ताकि वे सत्यता को पहचान सके, समझ सके, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की आप सहायता करें, आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम सब जकरयाह नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि जकरयाह ने दर्शन में देखा था कि घाटी की मेहदियों में कुछ घुड़सवार खड़े हैं जिनका सरदार लाल घोड़े पर सवार है। जकरयाह के पूछने पर उनके सरदार ने बताया कि वे घुड़सवार परमेश्वर द्वारा पृथ्वी पर गश्त करने के लिए भेजे गए हैं, अर्थात पृथ्वी की परिस्थितियों को देखने और अपने लोगों की सुधि लेने के लिए। उनका सरदार देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु था और घोड़ों का रंग प्रतीकात्मक था। लाल रंग का अर्थ था युद्ध, सफेद रंग का अर्थ है विजय। संपूर्ण विश्व में शांति थी परंतु यरूशलेम में शांति नहीं थी। अतः परमेश्वर को यरूशलेम के लिए जलन हुई और उसने यरूशलेम के लिए अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। तो आइए हम आगे देखते हैं जकरयाह के पुस्तक एक अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, मुझे यरूशलेम और सियोन के लिए बड़ी जलन हुई है। लिखा है, मुझे यरूशलेम और सियोन के लिए बड़ी जलन हुई है। परमेश्वर की जलन मनुष्य के समान क्रोध नहीं है जो मनुष्य की गहन हानि से उत्पन्न होता है और उसके स्वार्थ से संबंधित है। यरूशलेम परमेश्वर का नगर है और इसराइल उसकी प्रजा है। वह तो आज भी इसराइल के शोषण की वैश्विक हाय को जानता है और वह अपनी प्रजा के लिए अत्यधिक जलन रखता है। मेरे विचार में समय आने पर वह इसराइल के पक्ष में काम करेगा। संसार तब भी और आज भी उनके त्याग के लिए तैयार है। हम पढ़ते हैं जकरयाह एक अध्याय के 15 पद में लिखा है, जो जातियां सुख से रहती हैं उनसे मैं क्रोधित हूं, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। यहां पर लिखा है कि जो जातियां सुख से रहती हैं उनसे मैं क्रोधित हूं। इससे स्पष्ट होता है कि अन्य जातियों के लिए परमेश्वर का दंड कुछ समय का था, परंतु संसार की सब जातियां चाहती हैं कि उनका सर्वनाश हो। हम जकरिया एक अध्याय के 16 पद में आगे पढ़ते हैं, इस कारण यहोवा यूं कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूं, मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ध्यान दीजिए, कहता है अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूं। परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ दया का व्यवहार करने के लिए लौट आया था। धर्मशास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर दया का धनी है। वह आगे कहता है, यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। कुछ लोगों के विचार में यह यरूशलेम के वृहत नगर निर्माण के विषय में कहा गया है। मेरे प्रियो, यह सच भी है, परंतु जब धर्मशास्त्र मापदंड या डोरी की बात करता है तब उसका अर्थ होता है कि परमेश्वर सीधा हस्तक्षेप करने जा रहा है। यहां यरूशलेम 70 वर्ष की गुलामी अर्थात बंधुआई के बाद फिर यरूशलेम में बसने लगा है, इसलिए परमेश्वर उसकी ओर दया दृष्टि करेगा। संपूर्ण संसार को इस तथ्य का बोध होना आवश्यक है कि पृथ्वी पर शांति तब ही आएगी जब यरूशलेम में शांति होगी। विश्व शांति की कुंजी यही है। क्या हमने इसका प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों में नहीं देखा है? क्या आज हम नहीं देख रहे हैं? इसराइल ने देख लिया है कि संसार में उसके मित्रों की कैसी कमी है। संसार को इसराइल से अधिक मध्य एशिया के तेल से प्रेम है। आज इसराइल में नगर निर्माण चरम सीमा पर है, परंतु वे परमेश्वर की ओर फिरे नहीं हैं। आज वे अपने देश में हैं और नगरों का पुनरुद्वार कर रहे हैं। सियोनवाद एक वास्तविकता है, परंतु वे अविश्वास के कारण संपूर्ण विश्व में तीतर बीतर हैं और सताए जा रहे हैं। विश्व शांति की कुंजी यरूशलेम है। यह तथ्य आप इतिहास में भी देख सकते हैं। मेरे प्रियो, भविष्य की भविष्यवाणियों यरूशलेम की मुख्य भूमिका वास्तव में महत्वपूर्ण है। भजन संहिता 132 उसके 13 और 14 में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निकास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। और तब भजन संहिता 78 उसके 67 और 68 में फिर से लिखा है, फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया और एप्रेम के गोत्र को ना चुना, परंतु यहूदा ही के गोत्र को और अपने प्रिय सियोन पर्वत को चुन लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि यरूशलेम उसका मन प्रिय स्थान है। मुझे आज का यरूशलेम मन भावन नहीं लगता, परंतु एक दिन परमेश्वर उसे अति रमणीय स्थान बनाएगा। यद्यपि यरूशलेम आज भी परमेश्वर के दंड के अधीन है, वह उससे बहुत प्रेम करता है। जकरिया एक अध्याय के 17 पद में आगे हम पढ़ते हैं, फिर यह भी पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे और यहोवा फिर सियोन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। यह एक भावी घटना है, परंतु उन्हें यह बोध होना है कि वे परमेश्वर की योजना में सहभागी हैं, जो भविष्य तक की हैं। आज क्या आप और मैं अनंतकालीन मान्यताओं के निमित्त क्रियाशील हैं? आज जो आप कर रहे हैं उसकी मान्यता 10 वर्ष बाद क्या होगी, 100 वर्ष के बाद क्या होगी, 10 लाख वर्ष के बाद क्या होगी? क्या हम अनंत समय के संदर्भ में कार्य कर रहे हैं? हमें इस बात का ध्यान सदैव रखना है। मेरे प्रियो, आगे हम देखेंगे 4 सींगों का दर्शन। यह जकरयाह का दूसरा दर्शन है। जकरयाह की पुस्तक 1 अध्याय उसके 18 और 19 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सिंह हैं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उससे मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे सिंह हैं जिन्होंने यहूदा और इसराइल और यरूशलेम को तीतर वितर किया है। मैं 4 सिंहों के दर्शन को एक ही दर्शन मानता हूं और 4 लोहारों के दर्शन को एक अलग दर्शन मानता हूं। अधिकांश टीकाकार इस दर्शन को अर्थात इन दोनों दर्शनों को एक ही दर्शन मानते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं मानता। जकरयाह ने जिन 4 सिंहों को देखा था उन्होंने यरूशलेम, यहूदा और इसराइल को तीतर बितर किया है। उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य दोनों को उजाड़ दिया था। सिंह का अर्थ है अन्य जाति शासक। दानियेल नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 24 पद में यह स्पष्ट किया गया है। उन 10 सिंहों का अर्थ है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे। और तब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय के 12 पद में भी यही लिखा है, जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राज्य हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। अतः मेरे मित्रों, यह स्पष्ट है कि सिंह अन्य जाति राजाओं का प्रतीक है। जकरयाह द्वारा देखे गए ये 4 सिंह 4 विश्व शक्तियां हैं। ये 4 विश्व शक्तियां कौन हैं? बेबीलोन, मादी फारसी राज्य, यूनान और रोम। अगले दर्शन में परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि इन 4ों का अंत होगा। आइए हम देखते हैं 4 लोहारों का दर्शन। जकरयाह के पुस्तक 1 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा, ये वे ही सिंह हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया है कि कोई सिर न उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सिंगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने अपने सिंग उठाए थे। कहता है, ये क्या करने को आए थे? इनका यहां क्या काम है? तब उसने कहा, ये वे ही सिंह हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर न उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सिंगों को काट डालने के लिए आए हैं। मेरे प्रियो, यह भविष्यवाणी निसंदेह धर्मशास्त्र की सबसे अधिक अद्भुत भविष्यवाणी है। कहता है, ये 4 लोहार कौन हैं? इनके अनेक मत हैं। जेरोम, सिरिल और कॉल्विन इन्हें परमेश्वर के अलौकिक साधन बताते हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि लोहार दक्ष कर्मी होते हैं। डॉक्टर मेरिल अंगर के अनुसार 4 सिंह संसार की 4 विश्व शक्तियों का प्रतीक है जो अन्य जातियों का समय दर्शाते हैं। इसे हम लूकर के सुसमाचार 21 अध्याय के 24 पद में पढ़ सकते हैं। तो ये चार लोहार भी चार विश्व शक्तियां हैं जिन्हें परमेश्वर इसराइल के बैरियों को डराने और नष्ट करने के काम में लेगा। अन्य जातियों के समय से संबंधित दानियल की महान भविष्यवाणी, दानियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 31 से 45 पद, 7 अध्याय 2 से 13 पद के आधार पर 3 सिंह परमेश्वर के दंड की भुजा के अधीन लोहार बनते हैं और चौथा एवं अंतिम सिंह प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर उसके राज्य द्वारा नष्ट किया जाएगा। वह अपने बैरी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए आ रहा है और उसका बैरी उसकी प्रजा का भी बैरी है। भजन संहिता 2:1-12 में इस प्रकार पहला सिंह बेबीलोन मादी फारसियों द्वारा नष्ट किया गया, अतः मादी फारसी जो दूसरा सिंह थे पहला लोहार बने, यह दूसरा सिंह मादी फारसी राज्य तीसरे सिंह यूनान द्वारा नष्ट किया गया। यूनान दूसरा लोहार है। यूनान को नष्ट करने वाला चौथा सिंह रोम था जो तीसरा लोहार है, वरन अंत समय के 10 संयुक्त राष्ट्र हैं जिसे अंतिम दिनों में चौथा लोहार नष्ट करेगा और वह है प्रभु राज, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 16 पद में हम इसे पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, इतिहास के अनुसार रोम का विनाश बाहरी शक्ति के कारण नहीं हुआ था, उनके पतन का कारण आंतरिक भ्रष्टाचार था। ख्रिस्त विरोधी आकर रोम का पुनर्गठन करेगा और विश्व शासक होगा, उसका अंत कौन करेगा? प्रभु यीशु। अतः प्रभु यीशु चौथा लोहार है जब वह महाक्लेश के अंत समय में आएगा। मेरे प्रियो, आपने देखा कि हमें संपूर्ण वचन पढ़ने की कैसी आवश्यकता है। पत्रस अपनी दूसरी पत्री 1:20 में कहता है कि धर्मशास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचार नहीं है, उसे परमेश्वर की अनंतकालीन योजना के परिप्रेक्ष्य में देखना अति आवश्यक है। पहली बार प्रभु यीशु एक बढ़ई के रूप में आया था और दूसरी बार लोहार के रूप में आकर विश्व का शासक और विश्व का अंत करेगा तथा अपना राज्य वह स्थापित करेगा। यरूशलेम उसकी राजधानी होगा। मेरे प्रियो, इन 10 दर्शनों में से प्रत्येक में 2 तथ्यों पर बल दिया गया है। पहला, परमेश्वर ने इसराइल का त्याग नहीं किया है। दूसरा, इसराइल यहूदा यरूशलेम से परमेश्वर का अभिप्राय है वह भौगोलिक स्थान। इंग्लैंड या अमेरिका को 10 खोए हुए गोत्र मानना उचित नहीं है। आज परमेश्वर प्रभु यीशु में मनुष्यों का चुनाव करता है। जी हाँ, आप उस प्रिय में ग्रहण योग्य हैं, चाहे आप किसी भी जाति से क्यों ना हो। हम एक ऐसे नगर की बाट जोहते हैं जिसका निर्माता परमेश्वर है। इब्रानियों की पत्री 11:10 में हमारे लिए वचन है, यह हमारी आशा है। परमेश्वर इसराइल के साथ विश्वास योग्य रहेगा और अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा। परमेश्वर अपने कलीसिया के साथ भी विश्वास योग्य रहेगा। जी हाँ, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी कलीसिया में आप शामिल हैं तो निश्चय जाने कि वह आपके प्रति भी विश्वास योग्य है। आज संसार में लोग प्रभु यीशु के बारे सुनते हैं परंतु विश्वास नहीं करते। कई बार जानते हुए भी उसे ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन सत्य है और जो भी भविष्यवाणी उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस संसार के लिए दी है वह पूरी हुई है, हो रही है और होगी, कि प्रभु यीशु फिर से इस जगत में आएगा और इस संसार पर, इस जगत में राज्य करेगा। मेरे प्रिय मित्र, क्या आज आप उस राज्य में शामिल होने के लिए तैयार हैं? आज प्रभु यीशु आपके जीवन को भी बचाना चाहता है और चाहता है कि आप भी उसके राज्य में शामिल हो और उस महान शांति को प्राप्त करें जिसे वह देना चाहता है। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे कि आप उसके प्रेम में बढ़ते चले जाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक को सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे।